का था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्र कालिया के द्वारा लिखी गई कहानी त्रास। माँ मोड़े पर गुपचुप बैठी उसका स्वेटर बुन रही थी। पापा कमरे में नहीं थे। उनका कोट टंगा था जिसमें से नेफ्थलीन की बास आ रही थी। उसने कमरे को नए रूप में देखा तो वह अस्त व्यस्त हो गया। अपने को समेटते हुए उसने माँ से कहा कि वह आ गया है। उसे उम्मीद थी कि माँ उसके इंतजार में फाटक पर खड़ी होगी और इसी संभावना में उसने स्कूटर गली के मोड़ पर ही छोड़ दिया था। लेकिन कमरे का वातावरण देखकर उसे लगा कि जिस बात का उसे खतरा था वह हो चुकी है। वार्डरोब अपनी जगह पर नहीं थी, रैक में जूते पड़े थे और किताबें अलमारी में पहुंच गई थी। और माँ फाटक पर इंतजार करने के बजाय बिना चश्मे के मशीन की तरह स्वेटर बुन रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम रोज इसी वक्त आते हो? माँ ने पूछा। उसने बताया कि वह लगभग रोज इस वक्त आता है और आकर माउथ ऑर्गन बजाया करता है, फिर सो जाता है। तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, माँ ने कहा। पड़ोसिन बता रही थी कि तुम रात को बहुत देर से आते हो और कई बार नहीं भी आते, कई बार दिन रात कमरे में ही बंद रहते हो। उसने कहा उसने पड़ोसिन को कभी देखा ही नहीं, वह उससे बात नहीं करता, उसे ये भी नहीं पता कि उसके कितने बच्चे हैं। पिछली गर्मियों में उनके यहाँ बच्चा हुआ था और उन्होंने वार्डरोब उसे दे दी थी। उसके पति ने कहा था उनके पास जगह बहुत कम है, उनके पास निरंतर जगह कम होती जा रही है। वह शायद इस बात से माँ का ध्यान हटाना चाहता था। तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? तुम्हारा इस शहर में कौन है? तुम्हें दुआ सलाम तो रखनी ही चाहिए। माँ गंभीर थी। उसने कहा उसे इन तमाम बातों का पता है और वह कभी कभी दुआ सलाम किया करता है। माँ ने स्टोव पर दूध चढ़ा दिया और पूछा, दूध के साथ क्या लोगे? उसने कहा कि वह दूध नहीं पीता, वह कॉफी के साथ जिंजर बिस्किट लेगा। वे कड़वे बिस्किट? माँ ने कहा, तुम मुझे दुखी करते हो, तुम सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? तुम्हारा रंग कितना काला हो गया है। उसने कहा कि वह सेहत का बहुत ख्याल रखता है और उसका रंग पहले से ही काला है। उसकी बात का माँ पर कोई असर नहीं हुआ। माँ ने दूध का गिलास उसके हाथ में थमा दिया जैसे वह दूध ही पिएगा। माँ ने कहा, तुम्हारे पापा बहुत खुश थे कि तुम्हारे कमरे से सिगरेट की राख नहीं मिली। उसने कहा कि वह सिगरेट नहीं पीता। उसे खुशी हो रही थी कि वह इतनी कुशलता से सफाई कर सकता है। उसने वार्डरोब और रैक की ओर देखा तो उसे अपनी मूर्खता पर खेद होने लगा। उसने तमाम चीजें फेंक दी थी परंतु वह रद्दी वाले का इंतजार करता रहा था। दूध का घूंट लेते ही उसने माँ की ओर देखा। उसे लगा उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। पिछली बार जब माँ को देखा था, माँ की गर्दन पर झुर्रियां नहीं थी। वह माँ के सामने परास्त नहीं होना चाहता था। उसने कहा कि जब वह मकान में आया था तो सिगरेट के ढेरों टुकड़े थे और राख, बियर और विस्की की खाली बोतलें। उसे निहायत सादगी से बच्चों की तरह आश्चर्य प्रकट करते हुए माँ की ओर देखा। उसने दूध का गिलास वही मोड़े के पास रख दिया और मोड़े पर चढ़कर माँ को बोतलें दिखाने लगा जो वार्डरोब की छत पर रद्दी के नीचे दबी पड़ी थी। माँ ने बोतलें देखी तो चौंकी नहीं, बल्कि रहस्य खुलने की एक हल्की सी खुशी उनकी झुर्रियों में फिसलने लगी। माँ ने पूछा, ये बोतलें तुम्हारी नहीं? वह हंसा, उसकी होती तो वह फेंक ना देता। वह हंसी नहीं ना आश्वस्त हुई, वह उसे पूरी तरह से टटोल लेना चाहती थी। माँ ने कहा, तुम्हारे पापा ने देखी तो बहुत उदास हो गए, वह वापस चलने के लिए कह रहे थे। वे मामूली मामूली बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। उसने पूछना चाहा कि पापा कहाँ हैं, मगर एक अपराध भावना के अधीन वह पूछ नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आते ही इस तरह घर की सफाई करने लगेंगे। रैक में जूते पड़े थे। उसने जूतों को टटोल कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। माँ रसोई में चली गई तो उसने अलमारी खोलकर किताबों के पीछे कुछ टटोला और बिना देखे एक पैकेट उठाकर जेब में रख लिया। उसने ये तमाम चीजें फेंक क्यों नहीं दी? वह शायद इस तरह चीजें नहीं फेंका करता, वह पड़ोसी को दे देता। लेकिन उसे मालूम है कि उसके पड़ोसी का इसमें विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास है। उसकी मौजूदगी से दोनों विस्मित हुए होंगे। वह लज्जित सा खड़ा रहा। यह वह अपने पापा की अलमारी में से अक्सर देखा करता था। छिपाने की जगह भी उसने पापा से ही सीखी है या उत्तराधिकार में प्राप्त की है। सर्वप्रथम इसे देखकर वह विस्मित हुआ था, लेकिन वह कभी पूछताछ नहीं कर पाया था, क्योंकि वह जानता था पापा किताबों के पीछे वही चीजें रखा करते हैं जिनके उत्तर नहीं होते या जिनका कोई अर्थ नहीं होता। होता होगा, मगर उसके लिए नहीं। पापा अपने सर्टिफिकेट, जीवन बीमा की पॉलिसी, मकान की रजिस्ट्री भी लोहे के गोल डिब्बे में रोल करके वही रखते थे। बैंक की पासबुक भी। वह अवकाश के क्षणों में पापा का बैंक बैलेंस जरूर देखा करता था। वह अनिश्चय की स्थिति में कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसने कमीज के बटन खोलकर कुछ विदेशी पत्रिकाएं बनियान के नीचे छिपा ली और बटन बंद करके मोड़े के पास बैठ गया। बूटों के फीते खोलने लगा खिन्न मन से। सुबह भी वह इसी खिन्नता के साथ उठा था। वर्षों बाद उसने इस शहर की सुबह देखी थी और उसे बहुत हैरानी हुई कि बसें इतनी सुबह चलने लगती हैं, दूध के डिपो पर लोगों की इतनी लंबी कतार होती है और अखबार इतनी देर पहले ही बिक जाते हैं। वह गलत कह गया। उसे शायद इन तमाम बातों का पता था, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता था कि वह इतनी देर से उठने वाला जीव है। स्टेशन जाने से पहले तक उसे एहसास भी नहीं था कि वह अपने घर वालों को रिसीव करने जा रहा है। उत्सुकता विहीन वह प्लेटफॉर्म पर सिगरेट फूंकता रहा और गाड़ी आते देख उसने सिगरेट फेंक दी और हाथ धो लिए थे, क्योंकि वह भूला नहीं था कि उसके पापा सिगरेट को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। इसमें से कुछ उसका भी दोष था। उसी की लापरवाही से एक बार उसकी खाट और बिस्तर जल गए थे और उसकी छोटी बहन ने केवल इतना बताया था कि जब वह कॉलेज से लौटी थी तो पापा बाल्टियां भर भर कर आग बुझाने में व्यस्त थे। इस सिलसिले में उसके पापा से आज तक कोई बात नहीं हुई थी। इतना जरूर हुआ था कि उस दिन के बाद उसने पापा के सामने सिगरेट का विज्ञापन तक नहीं पढ़ा। बल्कि जब रेडियो पर सिगरेट का विज्ञापन आता था तो वह स्टेशन बदलने पर मजबूर हो जाता था। घर वाले डिब्बे से उतरे तो उसे बहुत ही पहचाने हुए लगे। ना जाने क्यों उसे आशा नहीं थी कि वह इतनी सरलता से उन्हें पहचान लेगा, और चेहरे इतने पहचाने हुए भी हो सकते हैं। उन्हें नमस्कार करते ही उसे विश्वास हो गया कि उसकी भी माँ है, जिसकी गर्दन के नीचे झुर्रियां पड़ गई हैं और जिसका एक दांत टूट गया है और जो उसके सर पर इस तरह इतने अधिकार से हाथ रख सकती है, और उसका एक बाप है, दूसरों के बाप जैसा ही, यह बाप की कल्पना जैसा, जिसके सर के तमाम बाल सफेद हो गए हैं और जो बार बार थूक रहा है। उन्हें देखते ही उसे लगा था जैसे वह खिलौने हो और घर जाते ही उन्हें कार्निश पर सजा देगा। मुझसे फिर गलती हो गई, उसके घर कार्निश नहीं है, मेज भी नहीं है, माँ नाराज होगी, झाड़ू भी नहीं है। उनसे बात करते हुए उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वह इन्हें ही पत्र लिखा करता है, और इनके पत्र पढ़कर वह कितनी लापरवाही से जेब में ठूस लिया करता है। इन्हें तो शायद वह बहुत कुछ लिख सकता था जो उसने कभी नहीं लिखा। उसने कुछ रटी रटाई पंक्तियां ही हमेशा लिखी हैं, जिन्हें लेकर उसकी छोटी बहन बहुत चिढ़ा करती थी। एक ही इबारत के खत और फिर कालीशाही से लिखे हुए, वे अक्सर शिकायत करती। उसकी शिकायत जायज थी। उसकी छोटी बहन की शादी ना हो गई होती तो उनका इकट्ठे समुद्र देखने का इरादा था। वे मोड़े से उठने लगा तो उसका पैर दूध के गिलास से टकरा गया। गिलास टूट गया और गिलास में कैद दूध के खरगोश फर्श पर लौटने लगे। तुम्हें दूध नहीं पीना था, माँ ने कमरे में आकर कहा। वह अपने पैर लचाता हुआ खाट की ओर बढ़ गया, खिड़की से बाहर गली की ओर देखने लगा। सामने गली में बैठी बुढ़िया उसी तरह प्रतीक्षा की मुद्रा में बैठी जबड़े हिला रही थी। उसने खिड़की की तरफ पीट कर ली। तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया है? माँ ने पूछा। तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा कि उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ और वह उदास नहीं है, वह शायद थक गया है। मुझे लगता है हमारे आने से तुम्हें असुविधा हो रही है। उसने कहा कि उनके आने से वह बहुत खुश है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। पड़ोसिन कह रही थी उसने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, माँ ने कहा। उसने कहा कि पड़ोसिन की ओर देखकर उसे कभी हंसी नहीं आई। मुझे लगता है तुम्हें कोई बात कचोट रही है और तुम उसे निरंतर टाले रहे हो। किसी लड़की वड़की की बात तो नहीं? माँ उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। उसने कहा कि वह लड़कियों को लेकर कभी परेशान नहीं रहा, उसे इस बात की खुशी है। पी कौन है? माँ ने कहा। किशोर कुछ बता रहा था। उसने कहा कि किशोर बरसों पुरानी बात करता होगा। तुमने उसे यह भी लिखा था कि तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो? वह आया था और बता रहा था, उसके घर फिर जुड़वा बच्चे हुए हैं, माँ ने कहा। उसने कहा कि वे किशोर को चिढ़ाने के लिए तमाम बातें लिखा करता है, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि किशोर अब भी बच्चों की तरह बातें करता होगा। उसे दुख हुआ कि अब वह किशोर को भी नहीं लिख पाएगा। किशोर को वह इसलिए लिखता रहा कि किशोर उससे सैकड़ों मील दूर है और उसे अच्छा लगता था कि वह आसपास नहीं टूटता, उल्कापात की तरह हजारों मील दूर जाकर बिखरता है। माँ ने सुराही का पानी कमरे में बहा दिया और फिर कपड़े से फर्श पोंछ दिया। पानी उसकी जुराबों पर भी चला गया था। माँ ने जुराबे बाहर फेंक दी, उसके बूट रैक पर रख दिए और उसके पास ही खाट पर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उसे लगा वह रो पड़ेगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या कष्ट है? वह कहना चाहता था उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसे कुछ नहीं हुआ और उसे कोई कष्ट नहीं है, परंतु वह चुप रहा। कीली आवाज में बातचीत करना उसे सदा गलत लगा है। वह सर नीचा किए हुए बैठा रहा। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि माँ उसे जानना चाह रही है और उसे लेकर चिंतित हो रही है, जबकि वह अच्छी तरह से है। ये तुम्हारी कमीज के अंदर क्या है? माँ ने उसकी कमीज छूते हुए कहा। उसने कहा कि ये किताबें हैं और उसे किताबें हाथ में पकड़कर घूमने की आदत नहीं है। दिखाओ कौन सी किताबें हैं? माँ ने कहा। उसने कहा कि ये अंग्रेजी किताबें हैं और वह जल्दी ही माँ के लिए गीता लाएगा, उसके एक दोस्त की किताबों की दुकान है। उसने किताबें निकालकर बड़ी लापरवाही से अलमारी में फेंक दी। उसने कल ही किताबों पर अखबार के रैपर चढ़ाए थे। मुझे बड़े अक्षरों वाली रामायण चाहिए, पहले वाली रामायण अब पढ़ी नहीं जाती, उसके अक्षर बहुत छोटे हैं, माँ ने कहा और अपनी धोती से चश्मा साफ करने लगी। चश्मा पहनकर भी नहीं पढ़ा जाता? उसने पहली बार माँ से कुछ पूछा। नहीं, बाई आंख तो बेकार हो रही है, माँ ने कहा। उसने कहा कि वे कल छुट्टी लेकर माँ को अपने साथ नजर टेस्ट करवाने ले जाएगा। तुम्हें तो छुट्टी का बहाना चाहिए, माँ ने कहा। वह हंसा। माँ आखिर उसकी माँ है। माँ ने उसका हाथ चूम लिया। हाथ से जरूर सिगरेट की बास आ रही होगी, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। उसने इन लोगों के आने से पहले अपने को संतुलित और व्यवस्थित क्यों नहीं कर लिया, वह सोचने लगा। मगर इससे पहले किसी प्रकार के असंतुलन या अव्यवस्था से कट वह सोचने लगा मगर इससे पहले किसी प्रकार के असंतुलन या अव्यवस्था का अनुभव भी उसने नहीं किया था। माँ बाहर गई तो उसने महसूस किया कि सायान्विक तनाव से उसका सर भारी हो गया है। ट्रैंकुलाइजर की शीशी उसने कल रात छिपा दी थी। उसने दबे पांव वार्डरोब पे चढ़कर रोशनदान से शीशी निकालकर जेब में रख ली। सुराही में पानी नहीं था। गोली निकलने से पूर्व वह रसोई से गिलास उठाकर नल की ओर चल दिया। उसने गोली मुंह में रखी और पानी का लंबा घूंट लिया। ये तुमने क्या खाया है? उसने पीछे मुड़कर देखा। माँ खुफिया सिपाही की तरह उसके पीछे खड़ी थी। क्या खाया है बोलो। माँ भय और क्रोध से कांप रही थी। उसने कहा कि उसके सर में दर्द हो रहा है। माँ ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और आंखें मूंद कर दवा की तरह पानी पिया। फिर नल के नीचे सुराही रख ली, फिर जो अपने साथ लाई थी। वे अभियुक्त की तरह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर माँ के पीछे पीछे कमरे में आ गया। माँ ने अपने पर्स से कुछ गोलियां निकालकर उसके सामने रख दी और पूछा, ये कैसी गोलियां हैं? ये गोलियां उसके चिरपरिचित गोलियां थी। जानते हो तुम्हारे बिस्तर में क्या क्या मिला है? ये गोलियां, पत्र और पिने। तुम कभी अपना बिस्तर नहीं छाड़ा करते? माँ के होंठ फड़फड़ा रहे थे। उसने कहा कि वह बिस्तर नहीं, कभी कभी चादर झाड़ा करता है और उसने आज सुबह ही नई शीट बिछाई थी। ये कौन सी गोलियां हैं? माँ ने कहा, तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद खाकर देख लूंगी। उसने माँ के हाथ से गोलियां उठा ली और बोला, ये वो गोलियां नहीं है जिन्हें खाकर उसके मित्र ने आत्महत्या कर ली थी। ये थकान की गोलियां हैं और उसे एक सरकारी डॉक्टर ने ही लिख कर दी थी है। उसे अब थकान नहीं रहती। अब वह अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखता है और दोनों वक्त भोजन करता है। दूध उसे कभी अच्छा नहीं लगा, परंतु उसे उम्मीद है कि प्रोटीन मिलाकर वो पिएगा तो उसे जरूर पसंद आएगा। वह बोलता जा रहा था और माँ बहुत ही निहरता से उसकी ओर ताक रही थी, जैसे अपने आंखों के सामने उसकी मृत्यु देख रही हो। गाथा में अभी आप सुन रहे थे रविंद्र कालिया के द्वारा लिखी गई कहानी त्रास। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था विनीता श्रीवास्तव ने।